सूत्रभाष्यकृतवन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरौ गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तो कल हमने भ्रांति विचार की थी, पांच प्रकार की भ्रांति। अब ये आज आगे बतला रहे हैं कि भ्रांति है क्या चीज, किसको भ्रांति कहते हैं, फिर बाद में पीछे से फिर विचार कर लेंगे ना। तो भ्रांति क्या चीज है, यदि आवाज आती तो बंद कर दे, सतनाम बंद कर दे दरवाजा, नहीं रहने दे दरवाजा। भ्रांति कहते हैं क्या चीज है, तो भ्रांति कहते हैं अध्यास को, अध्यास का ही नाम भ्रांति है, उसी को भ्रम भी कहते हैं। फिर कहते हैं कि भ्रांति का अर्थ आपने अध्यास किया, तो अध्यास का अर्थ क्या है, अध्यास किसको कहते हैं, क्योंकि ये तो शब्द भ्रांति का पर्यायवाची अध्यास हो गया, अध्यास का अर्थ क्या है। तो फिर कहते हैं कि अध्यास कहते हैं भ्रांति ज्ञान का विषय, जो वस्तु, जिस वस्तु का हमारे को भ्रम होता है ना, भ्रांति होती है, वह वस्तु और उस वस्तु का जो मिथ्या ज्ञान है, दोनों को अध्यास कहते हैं। समझ में आई बात
जी?
जिस वस्तु का हमारे को भ्रम होता है ना, घटपट का जिसका भी होता है, एक वो वस्तु, एक उस वस्तु का जो मिथ्या ज्ञान है, वो भी वस्तु भी झूठी है ना, उसका जो ज्ञान है वो भी झूठा है। एक जो हमारी भ्रांति ज्ञान का विषय जो वस्तु और उसका जो मिथ्या ज्ञान, दोनों को क्या कहते हैं, अध्यास। समझ गए, दोनों को अध्यास कहते हैं। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं अध्यास का लक्षण करते हैं भी अतस्मिन् तद् बुद्धि अध्यासा, ये शंकराचार्य जी महाराज ने लक्षण किया भाष्य में, ब्रह्म सूत्र के भाष्य में कहते हैं वो। तो वो कहते हैं कि अतस्मिन् तद् बुद्धि, अतस्मिन् तद् बुद्धि का अर्थ होता कि जो वस्तु जैसी है वैसी उसको ना जान करके उल्टा जानना। समझ गए, जो वस्तु जैसी है, जैसे रज्जू है ना, रज्जू रस्सी, उस रस्सी को हमने रस्सी रूप में ना जान करके सर्प मान लिया या द्रार मान लिया या डंडा मान लिया, तो ये हो गया अध्यास। अतस्मिन् तद् बुद्धि, जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मान लिया। जैसे कहते हैं रविदास जी महाराज माधवे, क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, कहते हैं ना रविदास जी महाराज माधवे, क्या कहिए ब्रह्म ऐसा। ब्रह्म, ब्रह्म किसको कहते हैं, उन्होंने स्वयं ये बात लिखी है, माधवे हे माधो क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, कैसा जैसा मानिए होए ना तैसा। यही तो परिभाषा है अतस्मिन् तद् बुद्धि, जैसा मानिए होए ना तैसा, जो वस्तु हम जैसी मानते हैं वैसी ना हो, यही तो अध्यास है। कैसे वो कहते हैं नरपत एक सिंहासन सोया सपने भया भिखारी, अच्युत राज विचरत दुख पाया, राजा हरिचंद लो या राजा जागवल जान, राजा जनक मतलब सिंहासन पे बैठे हैं, दिन की बात है, सिंहासन पे बैठे थे वो अपने, तो दासियां उनकी मतलब सेवा कर रही है, बैठे मस्ती में, उनको बैठे बैठे थोड़ी नींद आ गई, बैठे बैठे तो उनको ऐसा लगा कि जैसे मैं भिखारी बन गया हूँ सपने में, मांगते हैं, बहुत लंबा प्रसंग है, भाव उनको ऐसा होगा कि मैं भीख मांग रहा हूँ, मेरे कोई भीख नहीं देता, मेरे को कोई, बैठे हैं सिंहासन पे, तो नरपति एक सिंहासन सोया, एक राजा सिंहासन के ऊपर बैठा बैठा सो गया, तो क्या आया सपने भया भिखारी, सपने वो भिखारी हो गया। तो अक्षत राज विचरित दुख पाया, राज उसका अक्षत है, भाव विद्यमान है, अक्षत मतलब गया नहीं कहीं नहीं, राज तो है ना उसका, अक्षत राज, राज उसका अक्षत है, जैसे है वैसे ही है, लेकिन विचरित दुख पाया, उस राज से बिछड़ गया वो राजा, दुख पाया। रविदास जी कहते सो गति भई हमारी, हे प्रभु हमारी भी उस राजे की तरह गति हो गई, विद्यमानता तो है आप हमारे हृदय में है, लेकिन विचरित दुख पाया, अज्ञान के कारण, अध्यास के कारण बिछड़ के हमने दुख पाया, हम अपने आप को जीव मानने लगे। ये हुआ ना हमारे साथ, है तो हम ब्रह्म हैं लेकिन बिछड़ गए उससे। किसने बिछोड़ा हमारे को? लेव चुड़की लगी तृष्णा माया। गुरु अमरदास जी कहते हैं ना कि लेव हमारी कैसे छुट गई, कैसे टूट गई, उससे लगी हुई थी ना उसके, जब हम थे माता के गर्भ में तब उसके साथ हमारी लेव थी, वृत्ति उसके साथ थी, उसको याद करते थे ना। लेकिन बिच्चों गर्भे निकल आया खसम विसार दुनी चित लाया। महाराज जी कहते हैं बिच्चों गर्भे निकल आया, जब गर्भ से बाहर आया, गर्भ के अंदर था तो उसको याद करता था। बिच्चों गर्भे निकल आया खसम विसार दुनी चित लाया, उसी समय जो खसम था मालक था वो बाहर आते, जब बाहर की हवा लगी तो वो बिछड़ गया। तो दुनिया के साथ चित लगा लिया तो दुनिया के तय काम। कहते हैं फरीद साहब, पढ़ा था ना आपने, हाँ, दुनिया के तय काम, दुनिया जो है किसे काम की नहीं है, हमारे काम आने वाली नहीं है। दुनिया की वड्याइयां कब न आवे काम, किसी काम में नहीं आती है। जितनी है दुनिया की बड़ाई, जितनी है ना लोगों की बड़ाई हमारे को मिलती है, वो काम आने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हमारी लिव छुड़ गई। वो यह अध्यास की ही बात चल रही है कि अध्यास के कारण ऐसा हुआ। अध्यास मतलब भ्रांति, भ्रम, जो वस्तु जैसी है उसको हम वैसा नहीं समझ पा रहे, यही अध्यास है जिसको भ्रांति कहते हैं। जैसे रस्सी को हमने सर्प मान लिया तो ये हमारे को अध्यास पड़ गया। तो वही रविदास जी महाराज कहते हैं, उदाहरण से बताते हैं कि नरपत एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी। सपने में वो राजा जनक जो भिखारी हो गया, और अच्युत राज बिछरत दुख पाया, सो गति भई हमारी। उसका राज्य जो था अक्षुण्ण था, जैसा था वैसा ही था, राज्य को कुछ नहीं हुआ। लेकिन स्वप्न में उसको, स्वप्न के कारण वो भिखारी हो गया राजा। उसको कोई भिक्षा मांगता तो कोई भिक्षा भी नहीं देता, उसको लोग धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं सपने में। तो सौगति भई हमारी, कहते हैं प्रभु हमारी भी गति ऐसी हो गई, अध्यास के कारण, भ्रांति के कारण, हमारे को ब्रह्म जो भ्रांति अज्ञान हो गया। लेव चुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं जो हमारी वृत्ति प्रभु के चरणों में थी वो माया ने ऐसा चरित्र बनाया कि वो छुड़क गई, उससे हमारी वृत्ति हमारे स्वरूप से टूट गई। जैसी अग्नि उदर में है तैसी बाहर माया। जिस प्रकार उदर की अग्नि है ना, जो भी उसमें डालते जाओ वो भस्म हो जाता है, तैसी बाहर माया। बाहर की माया भी ऐसी है, माया के कारण ही ये सब संसार के विषयक पदार्थ जो हैं ये भी माया रूप है ना। तो जितना भी आप विषय को भोगते जाओगे इससे तृप्ति होने वाली नहीं है। जैसे अग्नि जो पावक ईंधन नहीं ध्रापे, जिस प्रकार जो पावक है अग्नि है, ईंधन डालने से नहीं उसकी तृप्ति होती। ईंधन की तो मूकना भोरी दिति मो पाहे, ऐसा कहते एक जगह गुरु महाराज जी के, लकड़ियों का ढेर लगा दो बहुत बड़ा, लेकिन भोरी दिति मो पाहे, इतनी तीली होती है ना चिंगारी, इतनी को होती है तो वो उनको भस्म कर देती है। उसी प्रकार कहते हैं कि माया जो है, माया मायक पदार्थ जो विषय हैं, इनको भोगते हुए कभी भी किसी ने तृप्ति नहीं प्राप्त की, किसी का संतोष नहीं आता, क्योंकि तृष्णा विरले ही की बुझी है। किसी विरले की ही जो तृष्णा है उसकी तृप्ति होती है, समाप्ति होती है, क्योंकि बड़े बड़े राजन और भूमन ताकि तृष्णा बुझी। गुरु मारे कहते हैं सामान्य लोगों की बात ही नहीं है, बड़े बड़े जो राजा लोग हैं उनकी भी तृष्णा की, क्योंकि उन्होंने तब पूरे मतलब आनंद से विषयों को भोगा है, तब भी उनकी तृष्ण की समाप्ति नहीं हुई। यही बात है अध्यास की, जहां चलती है कि अध्यास कहते हैं भ्रांति को, भ्रांति कहते हैं अध्यास को। तो अध्यास का लक्षण शंकराचार्य जी करते हैं कि अतस्मिन् तद्बुद्धि अध्यासा, जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में ना जान करके उल्टा जान लेना। जैसे हमने रस्सी को सर्प मान लिया तो यह क्या है, अध्यास हुआ, भ्रांति हुई। और भी कहते हैं, ये दूसरा लक्षण भी करते हैं कि पूर्व दृष्टा स्मृति रूपा पूर्व दृष्टा अवभाषा अध्यासा, दूसरा लक्षण शंकराचार्य जी और करते हैं। ये लक्षण एक तो ये हुआ कि जो वस्तु जैसी उसको ना जानना उल्टा जान रहना, दूसरा लक्षण करते हैं कि स्मृति रूपा अध्यास कैसा है, भ्रांति कैसी है, स्मृति रूप है भाव जो पहले वस्तु हमने देखी है स्मृति जैसा लगता है नहीं, जैसे किसी की स्मृति आती ना ऐसा लगता है। पूर्व दृष्टा पूर्व में देखा हुआ जो अवभास है जो अनुभव है उसी को अध्यास कहते हैं। स्मृति जैसा है और पूर्व में देखा हुआ कोई वस्तु उसी को दोबारा देखना ये अध्यास है। तो ऐसा ही हुआ, सर्प हमने पहले कहीं देखा है या सुना है, जिसने सर्प कभी सुना नहीं या देखा नहीं उसको कभी भी सर्प का अध्यास नहीं होता। बच्चे को आप कह दो ना तो उसको सर्प से डर नहीं लगता, क्यों, वो सर्प को ही पकड़ने जाता है, सामने सर्प आ जाए तब भी वो पकड़ेगा। अग्नि को बच्चा जल्दी जाता है भाग के, क्योंकि अग्नि का ज्ञान नहीं उसको ना, हम लोगों को ज्ञान है कि अग्नि जलाती है, तो बच्चे तो बहुत जल जाते हैं, आपने देखा होगा, दौड़ करके वो पकड़ते हैं क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है। जो खिलौने वाला सर्प नहीं होता है जो ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं खिलौने बेचने वाले, हमारे को तो उससे भी भय लगता है, आपने देखा होगा, उससे भी थोड़ा सा भय लगता है, लेकिन जो बच्चा है उसको नहीं लगता, उसको हम खरीद के देते हैं, उसको ऐसे ऐसे करता रहता है क्योंकि उसने सुना नहीं है देखा नहीं है। अध्यास तभी होता है जब हमने पहले किसी चीज को देखा हो या सुना हो। उस दिन भी हमने बताया था आपको कि अध्यास में सामग्री ये होती है, भ्रांति में सामग्री होती है, या तो हमारे को अधिष्ठान का ज्ञान सामान्य हो और विशेष रूप से अज्ञान हो तभी अध्यास होता है। जैसे रस्सी को हमने सामान्य रूप से तो देखा कि ये कुछ वस्तु पड़ी है, लेकिन विशेष रूप से हमारे को अज्ञान है कि रस्सी पड़ी है। यदि हमारे को ये पता ही ना होता कि ये रस्सी भी कोई नाम की चीज़ होती या सर्प भी कोई नाम की चीज़ होता, फिर भी अध्यास ना होता, या अज्ञान से भी अध्यास नहीं होता और विशेष ज्ञान से भी अध्यास नहीं होता। सामान्य ज्ञान हो विशेष रूप से अज्ञान हो तभी भ्रांति होती है, किसी भी वस्तु में होती है। हमारे को अपने में क्यों हो रहा है, हम अपने आप को सामान्य रूप से तो जानते हैं, आप बच्चे से भी पूछो तो कहता मैं हूँ, कभी भी कोई बच्चा भी नहीं कहता कि मैं नहीं। हमारे को भी कोई पूछता है जब भी कोई आवाज़ लगाता कि आप कौन हैं, हम कहते मैं हूँ, तो हमारे को सामान्य रूप से ज्ञान है ना अपना, लेकिन विशेष रूप से ज्ञान नहीं है ना, तो हमारे को अज्ञान ही है कि हम नहीं हैं ऐसा भी नहीं है, और विशेष ज्ञान भी कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ ऐसा भी हमारे को ज्ञान नहीं है। हमारे को सामान्य रूप से ज्ञान है और विशेष रूप से हमारा अज्ञान है। तो विशेष रूप से जिसको ज्ञान ना हो, सामान्य रूप से ज्ञान हो, शास्त्र उपदेश उसी के लिए है ना, तो शास्त्र अज्ञानी के लिए है ना ज्ञानी के लिए है। ज्ञानी को जरूरत नहीं है और अज्ञानी को समझ में नहीं आएगा, उसको पता ही नहीं है ब्रह्म क्या होता है, इसलिए जिज्ञासु के लिए उपदेश और शास्त्र है। जिज्ञासु उसको कहते हैं जो सामान्य रूप से तो जानता है, विशेष रूप से जानने की इच्छा करता है, उसी के लिए उपदेश होता है। तो अध्यास की सामग्री यही है, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये कहते हैं कि भ्रांति किसको कहते हैं, तो भ्रांति कहते हैं अध्यास को। तो अध्यास किसको कहते हैं, अतस्मिन् तद्बुद्धि भाव, जो वस्तु जैसी हो उसको उस रूप में ना जान करके उल्टा समझ लेना, इसको भ्रांति इसको अध्यास कहते हैं। तो वेदांत विचार का मूल क्या है, अध्यास। वेदांत जो है केवल अध्यास को ही हटाता है, मुक्ति मुक्ति कहीं से आपको खरीद के नहीं देता, मुक्ति कहीं से ला के देगा नहीं, वेदांत केवल अध्यास को हटाएगा बस, क्योंकि मुक्ति ना कहीं से आती है ना जाती है, बंधन भी नहीं है मुक्ति भी नहीं है, ये तो केवल अध्यास के कारण हमने मान लिया है ना, मुक्ति प्राप्त करने वाली वस्तु नहीं है, केवल कहा जाता है कि हम मुक्त हो जाएंगे। मुक्त की मुक्ति होती है, प्राप्त की प्राप्ति और निवृत्त की निवृत्ति, यह संसार कभी हुआ ही नहीं तो इसकी निवृत्ति कहाँ से होगी, लेकिन फिर भी शब्द जाल तो है ना, जितना बताने वाला ये शब्द जाल है कि संसार की बंध की निवृत्ति होगी तो हम मोक्ष मुक्त हो जाएंगे। तो कहते हैं कि कोई नाम बंधन में पड़ा है ना कोई मुक्ति का है, लेकिन जितनी देर हमारे को अज्ञान है तब तक शास्त्र भी मानना पड़ता है, गुरु भी मरने पड़ते हैं, शिष्य भी मरना पड़ता है। जब ज्ञान हो जाता है तो गुरु शिष्य और शास्त्र तीनों झूठे हो जाते हैं। फिर कहते हैं शब्द जाल महारण्य, ये शब्द जाल तो बहुत बड़ा कहते भयानक जंगल है, इसमें उलझोगे तो कहीं किनारा नहीं मिलेगा। परंतु वो ज्ञानी के लिए, हमारे लिए नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भयाते कर्म है नाश। ये गुरबाणी का हमारे को सिद्धांत है ना, कि जितना भी कर्म हम करते हैं ज्ञान के लिए, तो जब तक ज्ञान है तब तक कर्म नहीं छोड़ सकते। कर्म के लिए मतलब कर्म ज्ञान के सहायक है ना, उनसे हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, तब हमारे को ज्ञान होगा। और जब ज्ञान भया तो कर्म है नाश, जब ज्ञान हो गया तो कर्म फिर करने की, यानी कि कर्म छूट जाएंगे ऐसा नहीं है। कर्म तो हम ज्ञानी हो के भी करते ही रहेंगे जब तक शरीर है, लेकिन कर्म की आसक्ति छूट जाती है, हम अपने आप को कर्ता नहीं मानते। कर्म के नाश का अर्थ है कि हमारा कर्ता भोक्तापना छूट गया, वो स्वभाविक होता रहेगा। जैसे पंखे का जब हम स्विच बंद कर देते हैं तो तब भी घूमता रहता है, जब तक उसमें वेग है घूमेगा, वो स्विच तो हमने बंद कर दिया। उसी प्रकार जिस दिन हमारे को ज्ञान हो जाता है, हमारे लिए तो शरीर उसी दिन खत्म हो गया, लेकिन तब भी छूट थोड़ी जाता है, रोटी भी खाते हैं, चलते फिरते भी हैं। उसका प्रारब्ध रूपी वेग जब तक है तब तक चलेगा। जीवन मुक्त तो उसी दिन हो गए, लेकिन जब शरीर छूटेगा तो विदेह मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना कि जीवन मुक्ति होती है एक, विदेह मुक्ति होती है। तो जब हमारे को ज्ञान हुआ उसी समय जीवन मुक्त हो गए हम, जीते हुए मुक्त। और जिस दिन ये देहपात हुआ उस दिन फिर हमारा विदेह मुक्त बहते, देह से अलग मतलब देह छूट गई। ये कहते हैं कि अध्यास का यही कारण है कि अध्यास से हमारे को सब कुछ हो रहा। माधवे क्या कहिए भ्रमैसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। तो कहते हैं कि आपने कृपा की हमारे ऊपर, रविदास जी कहते हैं पीछे हम पढ़ के आए हैं ना कि भ्रांति की निवृत्ति कैसे है, तो कहते हैं कि राजपयंग प्रसंग जैसे है अवकश मर्म जनाया। यही दृष्टांत रविदास जी ने दिया रज्जू सर्प का। राजपयंग, राज कहते हैं रज्जू, पुजंग कहते हैं सर्प। जैसे कहते हैं रज्जू में सर्प का है ना भ्रांति हमारे को ऐसी थी, पर आपने कृपा की हमारे ऊपर, गुरु लोग हमारे को मिल गए तो अवकश मर्म जनाया, अब हमारे को रहस्य का पता चला। रविदास जी कहते हैं अवकश मर्म जनाया, पहले हमारी गति वही हो रही थी राजा जनक की तरह, लेकिन अब जब गुरु मिल गए। इसलिए कहते हैं कि तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये उपनिषद कहती है कि उस तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। कैसे? समित पाणी, समित पाणी कहते हैं हाथ में भेटा लेकर के, कुछ भी लेकर के जाओ। और कैसे गुरु? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे गुरु नहीं, क्योंकि काचे गुरते मुक्त ना हुआ। जो माए मुंडो ते गुरु की जाते पर मना जाए, कबीर साहब कहते हैं उस गुरु की माँ का सिर मुन दो, कहते हैं ना, गाली निकालते हैं कबीर साहब। ऐसे कहेंगे कि हम तुम्हारी माता का सिर मुन देंगे तो कोई कहने देगा? लेकिन कबीर साहब तो स्वतंत्र वक्ता हैं, वो कहते हैं माए मुंडो ते गुरु की जाते पर मना जाए। जिस गुरु के पास जाने से भ्रम की निवृत्ति नहीं होती, उस गुरु की माँ का भाव उसको सजा दो के ऐसा तुमने पैदा क्यों किया, क्योंकि कैसा आप डुबे चौ वेद में चेले दिए बहाए। जिस गुरु आप भी डूब गया शब्द जाल में और चेले दिए बहाए, चेले भी उसी में बहा दिए, ऐसे गुरु के माँ का सिर मुंड दो। कहने का उनका भाव है कि मतलब श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु हैं उन्हीं से ब्रह्म की निवृत्ति होती है। ऐसे गुरु बहुत मिलते हैं संसार में, लेकिन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, ऐसे जब महात्मा तत्ववेता गुरु लोग मिलते हैं तब ब्रह्म की निवृत्ति होती है। ये कहते हैं कि अध्यास कहते हैं भ्रांति, कहते हैं भ्रांति ज्ञान का विषय जो वस्तु और उस वस्तु का मिथ्या ज्ञान, इन दोनों को कहते हैं भ्रांति। जैसे भ्रांति ज्ञान का विषय हमारा है रज्जू रस्सी, एक वो रज्जू नहीं सर्प, सर्प है ना भ्रांति ज्ञान का विषय, सर्प है, और उस सर्प का जो मिथ्या ज्ञान है, सर्प भी मिथ्या उसका ज्ञान भी मिथ्या, इन दोनों को अध्यास कहते हैं, दोनों को भ्रांति कहते हैं। फिर कहते हैं कि यह अध्यास कितने प्रकार का है। भ्रांति को तो हमने समझ लिया, लेकिन यह भ्रांति ये अध्यास कितने प्रकार का है? तो कहते हैं कि दो प्रकार का अध्यास होता है, एक अर्था अध्यास, एक ज्ञाना अध्यास। अर्थ कहते हैं विषय को, अर्थ का अर्थ है विषय, विषय मतलब वस्तु, जैसे सर्प है या घटपट है, जितने भी विषय हैं उनको अर्थ कहते हैं। एक तो है अर्थ का अध्यास, भाव एक अर्थ हुआ सर्प, अर्थ का अर्थ समझते हैं, अर्थ कहते हैं वस्तु को, अर्थ कहते हैं विषय को। विषय किसको कहते हैं? जो हमारे को अपनी तरफ खींच के बांधता है उसको विषय कहते हैं, जो हमारे को खींच लेता अपनी तरफ, बांध लेता है, असक्त कर लेता उसको विषय कहते हैं। तो वस्तु को कहते हैं अर्थ, अर्थ का अध्यास, अर्थ की भ्रांति, विषय की भ्रांति, वस्तु की भ्रांति। जैसे हमारे को सर्प की भ्रांति, एक तो होगी अर्था अध्यास, अर्थ भ्रांति, विषय वस्तु की भ्रांति, और दूसरा उसका ज्ञान। एक तो सर्प का हमारे को भ्रम हुआ कि इसमें सर्प है, दूसरा सर्प का ज्ञान भी तो हुआ, केवल सर्प का थोड़ी अध्यास हुआ, उसके ज्ञान में हमारे अंदर बैठ गया कि सर्प है, ये अयम सर्प अस्ति, ये सर्प है, ये ज्ञान भी हुआ हमारे को। तो दो प्रकार का कहते हैं अध्यास है, दो प्रकार की भ्रांति है, एक तो विषय की, एक उसके ज्ञान की, ये दोनों दो प्रकार की होगी। तो कहते हैं कि इसमें से भी जो विषय का अध्यास है ना, वस्तु का अध्यास, वो फिर छह प्रकार का होता है। पहले तो दो प्रकार की भ्रांति हुई, दो प्रकार का भ्रम हुआ, एक हुआ अर्थ का विषय का, और दूसरा हुआ उसके ज्ञान का। दो प्रकार का हमारे को भ्रम हुआ, एक सर्प का हुआ, एक सर्प का ज्ञान हुआ, दोनों हमारे को भ्रांति हो गई, भ्रम हो गया। और कहते जो सर्प का या विषय का जो अध्यास है वो भी छह प्रकार का है। छह तरह से हमारे को विषय की भ्रांति होती है, वस्तु की भ्रांति होती है। कौन कौन सी है? एक तो कहते हैं कि केवल संबंध का अध्यास, संबंध की भ्रांति होती है। जैसे सर्प जो है उसका रज्जू के साथ संबंध है, संबंध है ना उसका, उसमें भांस रहा है ना, वो तादात्म्य हो रहा है ना उसका, एकता हो रही है, तो संबंध होता ना। जैसे हम इसके ऊपर बैठे हैं तो हमारा इसके साथ संयोग हो रहा है, संयोग हो रहा है ना इसके साथ, तो हमारा इसके साथ कौन संबंध है? संयोग, संयोग हो रहा है। आप एक दूसरे से मिलेंगे, गले मिलेंगे, तो आपका संयोग उसके साथ हुआ, तो अब आपका संबंध संयोग संबंध। और दुनिया में तो हमारे संबंध हम जानते ही हैं, कोई पति पत्नी का संबंध है, कोई पुत्र पिता का संबंध है ना, जितने। एक तो केवल संबंध का हमारे को भ्रम होता है, क्योंकि जो वस्तु भ्रांति ज्ञान का विषय बन रही है ना, उसका अधिष्ठान के साथ जिस वस्तु में वो भास रही उसके साथ उसका संबंध है, तो उस संबंध का हमारे को अध्यास हो रहा। क्योंकि जब वस्तु झूठी है तो संबंध भी तो झूठा है, जब वस्तु नहीं रहेगी ज्ञान के बाद तो संबंध भी नहीं रहेगा। तो पहले तो हमारे को केवल संबंध का अध्यास हो रहा है, और दूसरा है संबंध का भी अध्यास होता है और संबंधी का भी होता है। संबंधी कहते हैं जिसका संबंध होता है, जिसमें संबंध होता है उसको संबंधी कहते हैं। हम कहते हैं ना ये हमारा संबंधी है, जो हमारा रिश्तेदार है उसका हमारे साथ संबंध है, इसलिए हम उसको संबंधी बोलते हैं। जिसका संबंध होता है ना, जिसमें संबंध रहता है उसको संबंधी कहते हैं। पहले तो हमारे को केवल संबंध का अध्यास होता है, कहीं कहीं हमारे को केवल संबंध का ही अध्यास होता है, और कहीं कहीं संबंध के साथ संबंधी का भी होता है। जैसे जहां हुआ सर्प, वाह सर्प के संबंध का भी हुआ और सर्प का भी हुआ, दोनों का हुआ। तो दो प्रकार का अध्यास हो गया ना, एक तो केवल संबंध का अध्यास हुआ और दूसरा संबंध के साथ संबंधी का भी हुआ, और तीसरा कौन सा है? केवल धर्म का अध्यास। संबंध अलग होते हैं, धर्म अलग होते हैं। किसी भी वस्तु के दो दो चीजें होती ना, एक तो उसमें संबंध रहता है, उसमें धर्म रहते हैं। तो ये कहते हैं कि धर्म को हम कैसे समझेंगे कि धर्म का अध्यास हो रहा है? कहते हैं कि जैसे मानो स्थूल देह है ना, स्थूल देह हमारी बाहर वाली देह, ये हमारा शरीर, इसका धर्म क्या है? इसके धर्म का मालूम है, इसका क्या धर्म है? इसका धर्म है जन्म और मरण, इसी का धर्म है ना, यही जन्मता है यही मरता है। इसका धर्म हुआ जन्म मरण। ये जो जन्म मरण इसका धर्म है, इसको हमने किसमें माना? अपने में। ये हमारे को कौन धर्म का अध्यास हुआ ना, जन्मना मरना धर्म है, तो धर्म की भ्रांति होगी हमारे को। जन्म मरण जो धर्म है उसकी भ्रांति होगी, तो उसको उसको हमने अपना धर्म मान लिया। धर्म तो इसका था, मान लिया हमने अपना। और दूसरा कौन सा है? इंद्रियों का जो धर्म है, देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, इंद्रियों का धर्म था, तो हमने क्या कहा? मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ। और धर्म इंद्रियों का था तो हमारे को भ्रांति हो गई कि हमारा है, तो धर्म का अध्यास हमने अपने में कर लिया। देखती तो आंखें हैं, लेकिन कहते हैं मैं देखता हूँ। मैं थोड़ी देखता हूँ, मैं तो आंखों को देखता हूँ कि आंखें देखती है कि नहीं देखती। जब देखती है तब भी हमारे को पता चल जाता, जब नहीं, जब इसमें कोई गड़बड़ होता है तब भी हमारे को पता चलता। तो हम थोड़ी देखते हैं, आंखें देखती, हम तो आंखों को देखने वाले हैं, हम तो इनके साक्षी हैं, हमारी सत्ता से ये देखती हैं। तो कहते हैं कि एक तो हमने स्थूल शरीर का धर्म अपने में मान लिया, धर्म का हमारे को भ्रांति हो गई, भ्रम हो गया। कर्ता भोक्तापना अंतःकरण का है, शे उर्मी होती है ना, शे विशेष माने जाते हैं, जन्म मरण इसका होता है, भूख प्यास प्राण का धर्म है, और कर्ता भोक्तापना सुख दुख मानना ये अंतःकरण का, मन का धर्म है। ये सभी हम अपने में मानते हैं। इंद्रियों का धर्म हुआ देखना, सूंघना, सुनना, ये भी हमने अपने में माना धर्म की भ्रांति होने से। और अंतःकरण का जो धर्म है वो भी हमने अपने में माना। तो ये कहते हैं धर्म का अध्यास है। पहले तो कहा था संबंध का अध्यास, उसके बाद संबंध सहित संबंधी का अध्यास, अब कहते धर्म का अध्यास। अध्यास मतलब भ्रांति, अध्यास से यही अध्यास शब्द जब भी बोलेंगे तो उसका अर्थ है भ्रांति। तो फिर हुआ हमारे को धर्म की भ्रांति हुई, जो देह का धर्म था उसकी भ्रांति हुई, तो हमने अपने में माना। इंद्रियों के धर्म थे देखना, सुनना इत्यादि, वो भी हमने अपने में माने। तो इसलिए कहते हैं कि उनके जो धर्म है ना, उन्हीं का आत्मा में अध्यास होता है, स्वरूप का नहीं होता। एक उनका धर्म है, एक उनका स्वरूप है। हम ये नहीं कहते कि मैं आंख हूं, कभी नहीं कहते ऐसा, ये तो कभी नहीं कहते ना, मैं आंख हूं, कोई नहीं कहता, मैं कान हूं, कोई नहीं कहता। हम कहते मेरे कान, मेरी आंखें, मैं आंख हूं, भाव जो स्वरूप है ना, चक्षु उसका स्वरूप है ना, जो चक्षु का देखना तो उसका धर्म है, जो उसका स्वरूप है मतलब आंख कान नाक ये जो इंद्रिय हैं, इनको हमने अपने में नहीं माना, केवल इनके धर्मों को माना। हम अपने आप को आंख नहीं मानते, कान नहीं मानते, नाक नहीं मानते, लेकिन धर्म अपने में मानते हैं। स्वरूप का अध्यास नहीं हमारे में, केवल इनके धर्म का, इनके धर्म की भ्रांति हुई हमारे को। तो ये कहते केवल धर्म का अध्यास है, केवल जब लगता है तो बाकी सब कट जाते हैं। केवल हमने धर्म को ही अपने में माना है, इनके स्वरूप को नहीं माना। फिर उसके बाद धर्म सहित धर्मी का अध्यास, वो तो केवल धर्म का अध्यास था, तो दूसरा अध्यास के धर्म का भी होता है, तो जिसका धर्म है उसका भी होता है, दोनों का होता है। वो कैसे होता है? ये कहते हैं कि अंतःकरण के जो धर्म है ना, कर्तापना भोक्तापना, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पुण्य हूँ, मैं पापी हूँ, ये अंतःकरण के धर्म है ना, इन धर्मों का भी हमारे में अध्यास होता है, और इनके जो धर्मी हैं उनका भी होता है। अंतःकरण का भी हो रहा है ना, केवल धर्म का ही नहीं हो रहा, सुख दुख का अनुभव करना इसका धर्म है। अंतःकरण का धर्म है ना सुख का अनुभव करना, सुख दुख का अनुभव करना, पुण्य का पाप का, कर्ता अपोक्ता मानना, ये अंतःकरण का धर्म था। तो अंतःकरण के कर्ता भोक्ता आदि धर्म और स्वरूप दोनों का हमारे में अध्यास हो रहा है। हम केवल सुख दुख को ही अपने में नहीं मानते, सुखी हूँ दुखी हूँ, तो अंतःकरण का स्वरूप भी हमने अपने में माना है। तभी तो अनुभव वो करता है ना सुख का, जो अंताकरण है उसका धर्म है ना सुख दुख का अनुभव करना, मानते हम अपने में हैं। तो धर्म का भी अध्यास हो रहा है, धर्म के सहित धर्मी का भी हो रहा है जिसका वो धर्म है। हम अपने आप को अंताकरण मान के तो ऐसा बोलते हैं, मन के साथ अटैचमेंट होते तभी तो कहते हैं ना कि मैं सुखी हूँ दुखी हूँ, मैं पुण्य हूँ मैं पापी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ मैं अज्ञानी हूँ। तो हमारे में धर्म का भी हो रहा है, धर्मी का भी हो रहा है, दोनों का हमारे को भ्रम हो रहा है। और आगे है अन्योन्य अध्यास, अन्य में अन्य का अध्यास, अन्य तो समझते ही हैं, एक में दूसरे का, एक में दूसरे का अध्यास भ्रम हो गया, वो कैसे है? उसके लिए कहते हैं कि लोहा और अग्नि की तरह, समझते हैं ना, जब लोहा लोहार उसमें डाल के भट्टी में तपाता ना, इतना लोहे का टुकड़ा होता है, तो जब वो लाल हो जाता तो हम क्या कहते हैं उसको? हम लोहा नहीं कहते। जब उसको हाथ लगाएंगे तो वो जल जाएगा, तो क्या हम क्या कहते हैं? अग्नि ने जलाया है, लोहे ने जलाया, कभी नहीं कहते। चाय हमारे ऊपर गर्म गर्म चाय जब हमारे ऊपर गिरती है तो क्या कहते हैं हम? चाय ने जलाया, जो चाय है वो जलाती है क्या? वो तो अग्नि का धर्म है, चाय कभी नहीं जलाती किसी को, उसमें वो तो जल है ना, तो जल का धर्म नहीं है जलाना, उसमें अग्नि तत्व जो है ना उसने जलाया है। लेकिन हमारे को भ्रांति हो रही है, भ्रांति हो रही है, अन्य अन्य में अन्य का अध्यास हो रहा, लोहे में अग्नि का, अग्नि में लोहे का, क्योंकि पता नहीं चलता ना। लेकिन लोहा कभी नहीं जलाता, वही लोहा ठंडा करके जहां रखो हाथ में पकड़ो जलाता है? नहीं जलाता। लेकिन वहां तो हम कहेंगे कि हमारे को अग्नि ने जलाया। तो ये कहते हैं कि ये अन्य में अन्य का अध्यास हो रहा है, भाव उनको दोनों को हम विवेचन नहीं कर पा रहे, ये इसका धर्म है किसका धर्म है, ये अग्नि है कि लोहा है, वो मतलब एक जैसे ही भासते हैं एक है। इसीलिए कहते हैं लोहा और अग्नि और आत्मा में अनात्मा का हो रहा, उसी प्रकार ना हमारे को, हम अपने आप को आत्मा होते हुए भी जीव मान रहे हैं, जैसे लोहे अग्नि की एकता हो गई ना, ऐसे हमारी इंद्रियों के साथ शरीर के साथ अंतःकरण के साथ एकता हो गई। ये सब अनात्मा था पदार्थ, लेकिन हमने इसी को आत्मा मान लिया, ये हमारे को अन्य में अन्य का अध्यास हो रहा है। अनात्मा में जड़ में चेतन का, अनात्मा कहते जो जड़ पदार्थ है प्रपंच या ये शरीर, इसमें हमारे को अध्यास हो रहा है। ये कहते हैं कि अन्य में अन्य का अध्यास। और छेवा क्या है? अन्यत्राध्यास। अन्यत्र कहते हैं एक का दो में से, अन्यत्र कहते दो में से एक, ये कैसे है? उसके लिए कहते हैं कि अनात्मा में आत्मा का स्वरूप अध्यस्त नहीं होता, आत्मा में जो अनात्मा है ना, अनात्मा में आत्मा का स्वरूप जो जे जड़ पदार्थ है ना प्रपंच या हमारा जो संघात है ये शरीर रूपी संघात, इसमें हमारी आत्मा स्वरूप से अध्यस्त नहीं होती है। जो हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप है, और ये क्या है? असत है, जड़ है, दुख रूप है ना, तो हमारा सत इसमें नहीं रहेगा, चेत इसमें नहीं रहेगा, प्रकाश इसमें नहीं रहेगा, भाव स्वरूप से हम इसमें नहीं है, स्वरूप से हमारी एकता नहीं होगी इसके साथ, स्वरूप से नहीं होती है। किंतु आत्मा में अनात्मा का स्वरूप अध्यस्त है, हमारा तो इसमें नहीं है लेकिन ये हमारे में स्वरूप से ही अध्यस्त है, कभी हुआ ही नहीं। ये समझने में कठिन पड़ती है बात, ये इसका मतलब है कि जो आत्म स्वरूप है ना वो अनात्मा में उसका स्वरूप जो है उसकी भ्रांति मात्र नहीं है। जैसे हमने शरीर में अपने को मान लिया ना, तो ऐसा नहीं है कि हम इस शरीर में ही हैं, इससे अलग हम है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसे इसने इसमें जब तक हमारे को ज्ञान नहीं तो हम अपने आप को यही मानते हैं ना, मानते हैं लेकिन हम स्वरूप से नहीं है कि हम है ही नहीं, कभी ऐसा तो नहीं है कि हम ब्रह्म नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। भले हमारे को नहीं पता चलता कि हम ब्रह्म है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम ब्रह्म हो ही नहीं सकते कभी, ऐसा नहीं है। इसलिए कहते स्वरूप हमारा इसमें अध्यस्त नहीं है, जो हमारा स्वरूप है वो केवल इसमें भ्रांति नहीं है, लेकिन इसका जो स्वरूप है वो हमारे में भ्रांति है। इसका जो जड़ पदार्थ का जो स्वरूप है ना, वो हमारे में केवल ये नहीं कि जब तक है तो हम कहेंगे अनात्मा नहीं, हम तो अनात्मा नाम की कोई चीज होगी अलग से, ऐसा नहीं है, है ही नहीं कभी। जब हम सच्चिदानंद स्वरूप में आएंगे तो ये कहेंगे कि हम अनात्मा नहीं है, हम जड़ नहीं है, हम असत नहीं है, हम दुख रूप नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम प्राण नहीं, यही कहेंगे ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम नहीं है तो शरीर नाम की कोई चीज होगी या कोई अनात्मा नाम की चीज होगी, है ही नहीं, वो स्वरूप से ही नहीं है, मतलब वो कभी हुई नहीं है। यही डिफरेंस दोनों का यही है कि आत्मा का भी अनात्मा में भ्रम तो हो रहा है, आत्मा का अनात्मा में भ्रम हो रहा कि मैं आत्मा नहीं हूं। तो ऐसा नहीं कि जब भ्रम हो गया तो आत्मा है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है, आत्मा है लेकिन ज्ञान के बाद पता चलेगा। लेकिन अनात्मा जो प्रपंच है उसका ब्रह्म में अध्यास हो रहा कि नहीं, कि ब्रह्म में ये है। तो यदि ऐसा ब्रह्म हो रहा है तो ऐसा मत समझना कि ब्रह्म से अलग ये भी है कोई, है ही नहीं है, स्वरूप से ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं है, ये दोनों का अंतर है। हमारा अनात्मा में स्वरूप अध्यस्त नहीं, केवल संबंध हमारा अध्यस्त है, संबंध हमारा आत्मा का संबंध इसके साथ कल्पित संबंध है जब तक ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो अनात्मा है प्रपंच है इसका ब्रह्म में स्वरूप भी कल्पित है और संबंध भी कल्पित है, दोनों कल्पित है। हमारा केवल संबंध कल्पित है, स्वरूप नहीं, क्योंकि स्वरूप तो हमारा सच्चिदानंद है। लेकिन जग तप ज्ञान नहीं, हमारा संबंध इसमें कल्पित है। दोनों में ये अंतर समझना कि अनात्मा जो जड़ पदार्थ हैं इनका तो हमारे में स्वरूप भी कल्पित है और संबंध भी कल्पित है, हमारा इसके साथ केवल संबंध है कल्पित मिथ्या जब तक ज्ञान नहीं होता। स्वरूप हमारा कल्पित नहीं है क्योंकि सच्चिदानंद है। तो ये अन्यत्राध्यास है, एक में एक का, दोनों में से एक का अध्यास हो रहा। ये छह प्रकार का अर्थाध्यास है, वस्तु का अध्यास है, वस्तु की भ्रांति है छह प्रकार की। पहले तो एक नंबर है संबंध का केवल अध्यास, और दूसरा है संबंध के सहित संबंधी का अध्यास, और तीसरा है केवल धर्म का अध्यास, जो कर्ता भोगता पना अथवा जो देखना सुनना, ये धर्म का अध्यास, और उसके बाद धर्म के सहित धर्मी का अध्यास, जिमें कर्ता भोगता पना धर्म है अंतःकरण का, और धर्मी भी साथ में हम बन गए, सुखी हूं दुखी हूं, ये हो गया धर्म सहित धर्मी का अध्यास। और फिर उसके बाद पांचवा है अन्योन्याध्यास, जो हमने अभी विचार किया था लोहे में अग्नि का, अन्य में अन्य का, और छठा क्या है अन्यत्राध्यास, जो अभी अभी हमने किया अनात्मा में आत्मा का, आत्मा में अनात्मा का। यह छह प्रकार का अर्थाध्यास है, केवल अर्थ का ध्यास जो छह प्रकार का। पहले दो प्रकार का ध्यास तो हुआ, एक अर्थाध्यास एक ज्ञानाध्यास, एक वस्तु का भ्रम दूसरा वस्तु के ज्ञान का भ्रम, और जो वस्तु का भ्रम है वो छह प्रकार का हो गया, केवल धर्म का, और दूसरा हुआ केवल पहले हुआ संबंध का, फिर संबंध के सहित संबंधी का, तीसरा हुआ धर्म का केवल धर्म का, चौथा हुआ धर्म सहित धर्मी का, और पांचवा हुआ अन्य में अन्य का जय लोहे में अग्नि का, और छठा हुआ अन्यत्रा मतलब एक का, अनात्मा में आत्मा का केवल, अनात्मा में आत्मा का केवल संबंध कल्पित है, ये एक है। और आत्मा में अनात्मा जो है वो स्वरूप से भी नहीं है, संबंध से भी नहीं है, है ही नहीं। ये दो प्रकार छह प्रकार का केवल वस्तु का अध्यास है। अब ये कहते हैं ये जो छह प्रकार का हमने बताया ना आपको अध्यास भ्रम, ये स्वरूप अध्यास और संसर्गाध्यास, एक स्वरूप का, स्वरूप हमारा जैसे वस्तु का घटपट का स्वरूप है ना, जैसे गोल मिट्टी का बनाया हुआ जो पेंड है उसको घट कहते हैं, उसका स्वरूप है, वो स्वरूप है ना, उसका रूप का, स्वरूप का उसका वो स्वरूप है, बना हुआ आकार उसका वो स्वरूप है। ये माइक है तो ये इसका स्वरूप है, एक तो स्वरूप का भ्रम हुआ, जैसे सर्प का रज्जू में हुआ ना, तो एक तो उसके स्वरूप का ध्यास ऐसा ऐसा सर्प होता है, और दूसरा संसर्ग का मतलब संबंध का ध्यास, एकता भासने लगी दोनों की, रस्सी और सर्प की, तो दो प्रकार का हो गया, एक स्वरूप का ध्यास दूसरा संसर्ग का ध्यास। तो ये कहते हैं कि या तो आप उस छह प्रकार का मान लो या फिर दो प्रकार का ही मान लो, दोनों में सभी आ जाते हैं, स्वरूप में और संबंध में, सभी जो छह हमने बताए ना, कहते दो इसी में आ जाएंगे, छह सब इसी में अंतर्भूत हो जाएंगे। उपरोक्त छठ अध्यास के अंतर्गत ही है, ये कहते हैं कि दो प्रकार का जो अध्यास है ना, एक स्वरूप का एक संबंध का, ये जो अध्यास है उपरोक्त छठ अध्यास इसके अंतर्गत है, जो छह प्रकार के हमने बताए वो इसी दोनों में आ जाएंगे, एक तो स्वरूप का और दूसरा संबंध का, और छह इसी में आ जाएंगे, वो बताएंगे भी कौन किस में आता है। फिर कहते हैं कि और जो पांच भ्रांतियां हमने पीछे बताई थी ना, विचार किया हमने, पांच प्रकार की हमारे को भ्रांति होती है, एक होती है भेद की भ्रांति, दूसरी होती है कर्ता भोगतापने की भ्रांति, तीसरी होती है संग की भ्रांति, चौथी होती है विकार की भ्रांति, और पांचवी होती है ब्रह्म से अलग संसार के सत्यपने की भ्रांति। ये पांच प्रकार की जो भ्रांतियां हैं ये भी कहते हैं दोनों के अंतर्गत आ जाती हैं, जहां तो स्वरूप से और जहां संबंध से, दोनों प्रकार के जो अध्यास है उसी में पांच भ्रांतियां भी आ जाती हैं। अनात्मा आत्मा के विशेषणों का ये तो बता दिया कि उसके बाद अन्यो अन्य अध्यास जो बताया था ना, लोहे अग्नि का जैसे है, वो भी कहते इसी के अंतर्गत आ जाता है। ये मतलब छह प्रकार का जो अध्यास इन्होंने अलग अलग बताया हमारे को समझाने के लिए, जब हम इसको थोड़ी और बारीकी से देखेंगे ना, बारीकी से देखेंगे तो दो प्रकार का ही केवल अध्यास है, या तो स्वरूप से होता है या संबंध से होता है, तो सभी उसी के अंतर्गत आते हैं। केवल हमारे को थोड़ा सा ज्यादा विवेचन करने के लिए उन्होंने छह प्रकार से बता दिया, इसी के अंतर्गत ही आता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जो हमारे को जितना बंधन दिखाई पड़ रहा है, जो हम हमारे को अपने आप को परिच्छिन्न मान रहे हैं, इसका कारण क्या हुआ, अध्यास। अध्यास मतलब भ्रांति, भ्रम, केवल भ्रम से ही हम अपने आप को जो कुछ भी मान रहे हैं ना, जो कुछ भी मान रहे हैं वो हम केवल भ्रांति से, जितनी उपाधियां हमने अपने साथ लगा रखी है वो भ्रांति से, क्योंकि नाम रूप ही तो है सब, जो कुछ हम अपने आप लगा रखा अपने साथ में वो नाम रूप ही तो मान रहे हैं ना, बिना नाम रूप के तो अस्थि भांति प्रिय दो तो ब्रह्म है, केवल नाम रूप है। तो जब कोई चिंतन करता है ना, तो फिर क्या होता है, नाम रहे हो साधु, रहे हो गुरु गोविंद, या रहे का अर्थ हम पंजाबी में समझते ना कि आपकी फलानी चीज रह गई छूट गई, तो नाम रहे हो, नाम खत्म हो गया, चिंतन करते करते क्या नाम रूप का ही तो भ्रम था ना, तो नाम रहे हो, नाम मतलब जो हमारी नाम जो हमने कल्पित कर रखे थे, श्याम लाल राम लाल, ये टीचर है, ये बैंक मैनेजर है, ये सब नाम ही तो है। तो जब हम अपने आप को सच्चिदानंद स्वरूप में देखेंगे तो नाम रहे हो, नाम नहीं बचेगा, और साधु रहे हो, जो हमने उपाधियां लगा रखी थी नाम के साथ, केवल नाम तो हमारा होता ही है, जैसे रामलाल है श्यामलाल है, लेकिन साथ में उपाधि होती है, ये फलाना ऑफिसर है, ये फलाना ये ज्ञानी है, ये हेडमास्टर है, ये टीचर, जो उपाधियां होती है वो भी गई, नाम रहे हो साधु रहे हो, और रहे हो गुर गोविंद, एक हमारे गुरु होते हैं एक गोविंद होता है, कहते ना कि गुर गोविंद दोनों खड़े कांकू लाकू पाए, किदे में किसके पाँव में मैं नमस्कार करूं, गुरु भी खड़े हैं गोविंद भी खड़े हैं, गोविंद बोले परमात्मा, तो किसको पहले नमस्कार करूं, बलहारी गुर अपने जिन गोविंद दियो बताए, कि मैं पहले गुरु को नमस्कार करूंगा क्योंकि उसने मेरे को गोविंद को मिलाया है, तो दो थे ना हमारे, तो कहते हैं कि नाम रहे हो साधु रहे हो, रहे हो गुरु गोविंद, गुरु और गोविंद का जो भेद था रहे हो, वो भी छूट गया। और द्वैत में था ना सब। गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते हैं कि नाम रहे हो साधु रहे हो, नाम रूप उपाधि भी छूट गई और साधु मतलब जो उपाधियां लगी थी साथ में पद की वो भी छूट गई, और गुरु और गोविंद का जो भ्रम था वो भी छूट गया। कहो नानक के जगत में किन जप्यो गुरमंत्र, बताओ कौन फिर जाप करेगा किसका। महाराज कहते हैं बताओ, कहो नानक ये जगत में किन जप्यो, प्रश्न किया किसने जपा। जपना तो तभी तक है ना जब तक द्वैत है, तो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, श्रुति भगवती कहती है कि जब ज्ञात हो गया तो द्वैतम न विद्यते, द्वैत नाम की चीज ही नहीं है कोई, क्योंकि है ही अकेला। वो कहते ना महाराज जी कहते भी खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक, उसने सब उसका पसारा है सकल काल का किया तमाशा। कहते ये तो काल ने प्रभु ने ये तमाशा है उसका, तो तमाशा कभी सत्य नहीं होता, तमाशा तो तमाशा ही होता है। महाराज जी कहते भी देखना आयो जगत तमाशा, मैं तो इस तमाशे को देखने आया हूं, मैं हूं परम पुरख को दासा, मैं तो इस तमाशे को देखने आया हूं। भाव ये तमाशा है, तमाशा जो होता है बाजीगर का वो झूठा होता है, उसमें केवल बाजीगर सत्य होता है। गुरु महाराज कहते हैं कि बाजीगर बाजी पाई नाना रूप पे एक दिखलाई, बाजीगर ने तमाशा बनाया तो नाना प्रकार का, तो बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवे अकेला। बाजीगर ने जब अपना तमाशा इकट्ठा किया तो केवल बाजीगर ही बचा। तो ये हमारा सब मन का किया हुआ है ना, ये हमने पसार रखा है तमाशा। जब आकर्क करत हो काबू हूं तुम मैं मृत देह धर सब, जब खींच लेते हो तो कहते आप अकेले रह जाते हो, ये हम ही ने पसारा पसारा है। जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो एक मेवा द्वितीयम, केवल अकेले ही बचेंगे फिर और कोई नहीं बचेगा, ये ही भ्रम है बस, इसी को विचार करना है। जब इसका विचार करेंगे तो फिर कल्याण हो ही जाएगा। आगे तो फिर अध्यास जो उसको अलग अलग करके बताएंगे, अभी तो केवल हमने को नाम बताए अध्यास के, भी इतने प्रकार का अध्यास होता है, इतने प्रकार का भ्रम होता है, फिर अकेले अकेले भ्रम को अलग अलग करके बताएंगे भी कैसा जो भ्रम है वो कैसे होता है, कैसा अध्यास कैसे होता है, उसको विचार धीरे धीरे करेंगे। अब ज़्यादा जब करेंगे तो पकड़ में नहीं आता, तो पहले तो इतना ही है कि अध्यास को हम धीरे धीरे समझ जाएं कि अध्यास क्या चीज़ है। एक बार तो समझ नहीं आती है, लेकिन फिर भी आप तो सब वेदांत सुनने वाले हैं, बताते तो रहते हैं महापुरुष, लेकिन उस समय उनके पास समय संक्षेप होता है, इसलिए खोलना बहुत मुश्किल होता है ना, तो वो उनको होता है कि जितनी बात हम बता सके 15 मिनट में 20 मिनट में उतनी बता दें, लेकिन फिर हमारे ऊपर से चले जाती है। और धीरे धीरे जब विचार करेंगे तब पता चलेगा, और दोनों को जब मिला के करते हैं ना हम, इसको बंद ही कर देते हैं। हम लोगों को गुरबाणी का भी इतिहास है ना, तो जब हम गुरबाणी को साथ में लेकर के चलते तो हमारे को समझ में ज़्यादा आता, बात तो वही है। कल भी हमने विचार किया था कि जैसे रविदास जी महाराज ने भी वही दृष्टांत दिया, तो शास्त्रकार भी वही दृष्टांत देते हैं कि भगवान को रविदास जी कहते हैं कि हमारा आपका अंतर कितना है, कहते हैं कि कनक कटक जल तरंग जैसा, यही तो रविदास जी ने कहा ना भी जैसे सोना और कड़ा, जैसे उनका अंतर है इतना ही आपका हमारे से अंतर है, जल तरंग जैसा, या तो जल और तरंग का जो भेद है इतना हमारा आपसे भेद है, जहाँ सोने के आभूषण जो बने हैं और सोने का जितना भेद है, वहा भेद हुआ ही नहीं। जो कड़ा बना दो या मुदरी बना दो तो सोना तो सोना ही रहेगा, और जल तरंग और फेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना हो, जल है तरंग है फेन है बुदबुदा है, जल ते भिन्न ना हो, सब गोविंद है सब गोविंद है, गोविंद भिन्न नहीं कोई। केवल भ्रांति से हो रहा है। अभी तो इतना रखेंगे, अब अभी हमारे को 2-3 दिन के लिए कहीं जाना है, जब आते हैं तब फिर विचार करेंगे। अभी स्वामी निर्मल चेतन जी 2-3 दिन आपने बैठना तो उनको मैं बोला था, वो कहते थे कि वहीं कमरे में हम सुना दिया करेंगे, फिर हम आते हैं, तो अभी हम यहाँ ही हैं। अभी हमारी महाराज ने ड्यूटी यहाँ ही लगाई है, फिर धीरे धीरे विचार करेंगे। अभी 2-3 दिन के लिए जाना है, फिर आते हैं। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।